याद में बैठते हैं और कुछ विशेष अनुभव होने लगता है, क्योंकि बैठना तो है पर बैठ करके जो संकल्प है मन और बुद्धि है वो जब एकाग्र हो जाता है फिर कोई मेहनत कुछ नहीं है। तो सहज है, जैसे बाबा कहते हैं ये सहज योग है बच्चे, सहज है। सिर्फ ये है कि जब हम परिवार में और व्यवहार में रहते हैं, लौकिक में चाहे अलौकिक में, तो जो मन बुद्धि उस तरफ जाती है परिवार और व्यवहार में, तो उसका प्रभाव पड़ता है। समझ भी है, ज्ञान है। बाबा कहते हैं बच्चे सब नॉलेजफुल है। मैंने समझ 6 मास का भी स्टूडेंट होगा ना तो उनको ये सब समझ है। 6 मास भी कोई रेगुलर बाबा की मुरली सुने तो मैं समझता हूं उसको उससे 6 मास से भी पहले बल्कि समझ पूरी आ जाती है। और समझ है भी कितनी, बहुत बड़ी बात नहीं है। बहुत से थोड़ी सी समझ है बस। आत्मा का पाठ पढ़ा तो ये बात समझ में मैं आ गई कि ये तो कर्म इंद्रियां हैं शरीर, मैं आत्मा इन कर्म इंद्रियों से काम करने वाली शक्ति है। जैसे ये अलग है शरीर, ये शरीर है 5 तत्वों का, परिवर्तनशील है, आत्मा इसको यूज करती है देखने के लिए, सुनने के लिए, संबंध में आने के लिए। शरीर से ही, शरीर का ही तो आधार देती है ना आत्मा। अच्छा ये समझ में आ गई। दूसरी समझ में बात आ गई कि आत्मा कहाँ की रहने वाली है, उसका अपना घर कौन सा है। ये तो पाठ बजाने के लिए हम संसार में आए हैं ना, मुसाफिर खाना भी कहते हैं। तो अपना घर की समझ आ गई है कि 5 तत्वों से पार जिसको ब्रह्म लोक परम धाम कहते हैं वो मेरा आत्माओं का रहने का स्थान है। वहां से हम आत्माएं पाठ बजाने के लिए आती हैं। तीसरी बात ये समझ में आ गई कि आत्माएं भी वहां रहती हैं और परमात्मा पिता वो भी वहां रहते हैं परम धाम में, परलोक में। निराकारी दुनिया है, वहां पर हम सब पाठ बजाने से पहले वहां रहते थे, वहां से आए हैं। और बात ये समझ में आ गई, बाबा ने बता दिया कि बच्चे जब आप वहां से आए थे तो सतो प्रधान थे। सतो प्रधान का मायना है कि आत्मा कर्म इंद्रियों की राजा, सतो प्रधान, अधीनता नहीं थी, किसी किस्म की अधीनता नहीं, मालिक। पाठ बजा रहे हैं मगर अधीनता नहीं है, कर्म इंद्रियों की अधीनता नहीं, मन सहित कर्म इंद्रियों के राजा होकर के पाठ बजाया है। उसकी यादगार है, मंदिरों में हमारी यादगार है। वो अब आत्माओं के इष्ट हैं, लोग भक्त जा रहे हैं वहां पर, वो हमारी संपूर्णता और संपन्नता की यादगार है कि ऐसी हमारी स्टेज रही है और एक जन्म नहीं कई समय गुजारा है। एकदम जैसे के संबंध में आते हुए उसमें जो विकारों का अंश मात्र भी नहीं था ही नहीं, पूज्य आत्मा और शरीर दोनों ही पवित्र, ये स्टेज हमारी रही है। ये सबको समझ आ गई है। पवित्रता माना के क्या है, निर्विकारी को पवित्र कहते हैं, जिसमें विकार नहीं है उसको कहते हैं शुद्ध। विकार में अशुद्धता आ गई, अब वो हमारी स्टेज रही है। धीरे धीरे फिर सतो से रजो, रजो से फिर तमो, ये भी लास्ट स्टेज है। अभी अभी कुछ समय से आप देखेंगे ना विकारों का भी, अभी जैसे आप कलयुग के अंत में तमो प्रधानता में, अभी कुछ रूप ही कुछ और है। अभी जो विकार का, विकारों का रूप है वो कुछ बिल्कुल और है। जैसे व्यक्ति विकारों के अधीन हो गया एकदम, जैसे वो समझता है कि विकारों के बिना कोई जीवन ही नहीं, ये स्टेज है अभी। अभी ये स्टेज है, उसको विकार छोड़ने में मेहनत है, विकार में रहने में सुख है, अच्छा लगता है। ये स्टेज होगी आत्मा, कहां आत्मा स्वतंत्र राजा, कहां आत्मा पराधीन गुलाम है, जैसे गुलाम है, क्योंकि विकार में ना गुलाम। व्यक्ति वस्तु के यूज करना अलग बात है, अधीन होना अलग बात है, दोनों में फर्क है। संबंध में आप पति पत्नी का संबंध है, बच्चों का संबंध है, संबंध है ना, अच्छा ठीक है, मगर अधीनता वो अलग चीज है, नहीं स्वतंत्र है। किसी को कोई अंडर ना रखता है, ना वहां रखता है ना रहता है, मगर स्वमान में रहते हैं। स्नेह भी है, प्यार भी बहुत है, संबंधों में स्नेह भी है, मगर किसी को अधीनता नहीं है। मेरे अनुसार चले या मैं किसी के अनुसार चलूं या चलाऊं, ये वहां संस्कार ही नहीं है, ही नहीं। संबंध भी है, प्यार भी है, मगर हर कोई समान में रहता है ना अपना। यहां भी मैं एक बार जब गया था जयपुर में, तो बहुत साल पहले सेवा के लिए मैं गया था, तो कहते हैं यहां के विशेष स्थान आपको दिखाते हैं, तो कहते हैं ये राजा का महल, अच्छा फिर कहते हैं ये रानी का महल। मैं क्या, क्यों राजा रानी इकट्ठे नहीं रहते थे? कहते हैं नहीं, ये अभी कलयुग में भी ऐसी स्टेज रही है, कलयुग में भी ऐसी स्टेज रही है कि वो जैसे के नहीं अपने समान में रहते थे, अपनी दासियां उनकी और सारा सिस्टम था, वो जब ओकेजन होता था खास तब आपस में मिलते थे। विशेष जैसे कि कोई सेरेमनी है या कोई विशेष दिन है, तब राजा रानी आपस में मिलेंगे। तो यहां भी आप देखेंगे ना कि आज से 100 साल पहले लौकिक दुनिया में भी हमने भी देखा है, आप लोगों ने भी देखा है, जब पूर्वज थे आपके ना तो जॉइंट फैमिली में रहते थे। ये तो ये नौकरियां शुरू हुई हैं बाद में, जॉब के कारण अलग अलग बच्चे हो गए, मां बाप अलग हो गए, पहले ऐसे होता ही नहीं था, सिस्टम ही नहीं था। बाप और बच्चे इकट्ठे रहते थे, शादी भी होगी कुछ भी हो इकट्ठे रह रहे। अब इकट्ठे रहना है तो नियमों में रहेंगे ना, ये जो अभी ये सिस्टम हुआ है बहुत, ये जो 50 साल से भी ज्यादा समय से सब कम हुआ है, जब ये अलग अलग से न्यूक्लियर फैमिली जिसे हम कहते हैं, पति पत्नी इकट्ठे रह रहे हैं बच्चों के साथ, बस पहले लोग फैमिली ज्वाइंट फैमिली में रहेंगे तो नियम मर्यादा में रहेंगे ना। मैंने डॉक्टर जिंदर प्रसाद की आप बायोग्राफी पढ़ी है, वो कहता हमारे दो बच्चे हो गए थे, मैंने अपनी मिसेज की शक्ल नहीं देखी है। ऐसे हो गया मिसेज की शक्ल नहीं देखी है, बच्चे दो हो गए। कितना डिसिप्लिन्ड लाइफ था वो, उसने विस्तार से उसमें सब कुछ लिखा है। कैसे हम लोग संबंध में भी, पति पत्नी के संबंध में भी नियम मर्यादा थी, बड़ा सख्त नियम। आजकल आप देखो लोगों की क्या हालत है। ये बाद में साकार बाबा के वक्त ये सिस्टम बना, जिसे आज फैमिली प्लानिंग ही कहते हैं या और कहते हैं। तो बाबा ने एक डॉक्टर को आया था माउंट आबू में, बाबा ने कहा ये क्या शुरू कर रहे हो, ये तो अधोगति हो जाएगी। बाबा पशु कंट्रोल हो सकता है, इंसान को कंट्रोल करना मुश्किल है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, इसी विकार में भले जाए बच्चा ना होना चाहिए। बाबा ने कहा ये तो एकदम तमो प्रदान हो गया। बाबा कहने लगा इसे आत्मा की शक्ति कितनी क्षीण होती है, कमजोर हो जाती है आत्मा। ये बड़ी भारी शक्ति है ब्रह्मचर्य की शक्ति जिसे कहते हैं। अब सन्यासी महात्मा को क्यों मान है, कन्याओं का क्यों पूजन होता है, बड़ी भारी ताकत है। सारा शरीर की आयु कितनी लंबी रहती है और स्वस्थ रहते हैं लोग, इसके कारण लोग इस बात को समझे, इस बात को बड़ी भारी ताकत है। और सतयुग में तो मनसा भी शुद्ध है, मन भी शुद्ध है ही, संकल्प ही नहीं है। जैसे इनोसेंट बच्चे होते हैं ना, छोटी उम्र 3-4 साल के बच्चे को क्या पता होता है, कुछ नहीं पता, पता ही नहीं है उसको, ये भी पता नहीं मेल फीमेल क्या होता है, ये भी समझ आई। ये सतयुग में ये लाइफ है, ये बात पहले हम बच्चों की समझ में आ गई, दूसरों को नहीं आती, कईयों को तो समझ ही नहीं आती। आप उनको यहां लाएंगे ना, वो सारी बातें समझ लेगा, कहता ये नहीं समझ आती बात, क्योंकि ये उसको समझ में आएगी जो कल पहले वाले होंगे बाबा के बच्चे। पवित्रता की पूरी बात, पूरी बात जिसके अंदर संस्कार होगा ना, जिसके अंदर संस्कार ही नहीं आया ही बाद में आत्मा है, उसने पवित्रता की दुनिया देखी नहीं है तो उसके अंदर संस्कार ही नहीं है ना, उसको समझ में नहीं आएगा। और बातें अच्छी लगेंगी मगर ये बात नहीं समझ आती कईयों को। अवदेशों में भी वो भाई बहने जो कन्वर्ट हुए हुए हैं वो इस बात को समझ रहे हैं, सारे नहीं समझ रहे हैं। भारत में भी कितनी आत्माएं द्वापर में आई है, भक्ति के संस्कार है उनके, पवित्रता के नहीं है। हाँ नियम है, सिंह है, संयम है, सिस्टम है, थोड़ा बहुत उनको समझ में आता है, संपूर्ण पवित्रता की बात उनको समझ में नहीं आती। इसलिए बाबा कहता है आप बाबा क्यों महिमा करता हूं बच्चों की, बाबा के तो सारे बच्चे हैं, सारी आत्माएं बाबा के बच्चे हैं, पर क्वालिटी तो है ना। जो सतयुग में सारे तो नहीं आते हैं, सारे बच्चे पर सबका पाठ सतयुग का नहीं है। त्रेता द्वापर कलयुग में आत्माएं आती है ना अपने घर से, और बहुत काल के बिछड़े हुए भी हम हैं, इसलिए भी बाबा को प्यार है। जो ज्यादा बिछड़ा होता है तो उसे प्यार होता है ना। हम तो सतयुग के आदि में आ गए, बाबा से आ गए वहां से पाठ बजाने के लिए। बाकी आत्माएं कोई त्रेता में आई, कोई द्वापर में आई, कोई कलयुग में आई, वो तो उसके पास ही थी, वहां पर ही थी। हम आत्माएं जो हैं बाबा से पहले आई अपने घर से, भूखे मारे में जिसमें जितनी ताकत है बाबा ने कहा वो पहले आता है, वो ज्यादा पाठ बजाता है, जिसमें ताकत कम है उसको कहते हैं लास्ट में, जैसे गेम में भी होता है ना, पहले कौन जाएगा, ओपनर कौन होगा, तो सोचना पड़ेगा ना, बाकी लास्ट वाले भी होते हैं उनका कोई भरोसा नहीं होता, कभी आउट हो जाए वो तो लास्ट वाले है ना, ये भी खेल है। ये सृष्टि के आदि में वो आत्माएं आती हैं जो पावरफुल होती हैं, उसमें भी फिर नंबरवार है बाबा ने बताया, मगर उनको ज्ञान उसमें फिर नंबरवार क्यों है, क्योंकि समझ तो आ गई, ज्ञान समझ में आ गया मगर धारणा में नंबरवार रहे। निश्चय में, विश्वास में, समझ में बराबर है, बाबा ने कहा ऑल नॉलेजफुल, मगर अंदर धारणा में समझ है, पर संस्कार जो बना हुआ है द्वापर से, दैहिक संस्कार बना हुआ है, विकारों के यूज करने का संस्कार बना हुआ है, विकारों का भी फायदा लिया है ना, विकारों का भी फायदा लिया है, उससे भी उनको अच्छा लगा है, प्राप्ति होती है, विकारों से भी प्राप्ति होती है, तो संस्कार बन गया है ना, चाहे वो गिरावट करता है नीचे ले जाता है, जैसे बैंक से पैसा निकालो तो खुशी तो होती है ना, पर बैंक बैलेंस तो कम हो गया ना जब बैंक से पैसा निकालोगे तो नोट आएंगे तो खुशी तो होती है ना, बैंक से निकालने में खुशी तो होती है ना, पर पैसा तो कम हो गया ना, ऐसे विकारों में जाने में भी अल्पकाल का, माया का भी तो अल्पकाल का सुख है ना, अच्छा लगता है ना, मगर अंदर है क्या, अंदर तो डोन है ना, अधीनता है ना, मेन बात है अधीनता ना, आत्मा विकार कोई यूज करोगे चाहे काम है क्रोध है लोभ, अधीनता है ना, मैं ना उसके बिना मैं नहीं रह सकता, उसके बिना मुझे कुछ थोड़ा सा चाहिए ना, तो चाहिए, मैं ना आत्मा बैगर हुई ना, अधीन हुई ना, स्वतंत्र कहां हुई, मालिक तो कुछ नहीं चाहिए ना, मुझे नहीं चाहिए कुछ, इतना सूक्ष्म है आप ज्ञान की कर्म गति को, बहुत टाइम लगेगा, इसलिए हम लोगों ने 3-3 दिन बुला रहे हैं वहां पर सोनीपत में, 3 दिन हम बैठ के उनसे ज्ञान की चर्चा और योग की करते हैं, तो पता लगता है कि अभी इनको कई बातों का पता ही नहीं। जो हम कर्म करते हैं, जो संकल्प करते हैं, उसके पीछे हमारी इंटेंशन क्या है, वही प्राप्ति होगी। इंटेंशन क्या है, मैं किसी को खाना खिलाता हूं, बड़े प्यार से खाना खिलाता हूं, पर खाना खिलाते वक्त आता है जरा मुस्कुराए तो सही ना, तो खाना खिला रही इसलिए रहा हूं कि उसकी मुस्कुराहट से मुझे प्राप्ति होती है, उसकी मुस्कुराहट की मुझे चाहिए ना, वैसे खाना खिलाओ ना, मुस्कुराए ना मुस्कुराए आपको क्या फर्क पड़ता है, नहीं फर्क पड़ता है। हमें हर कर्म की हमें चाहिए फल चाहिए हर कर्म का, और वो पुरानी गीता भी कहती है कर्म का फल की इच्छा न रख, पर फल की इच्छा बिना कोई कर्म करती है, आप चाहे कर्म बना कोई भी करो, हाईएस्ट स्टेज ये है कर्म करो, प्यार से करो, अच्छी तरह से करो, पर रिटर्न को कोई दुख हो जाएगा अगर रिटर्न ना मिला, इच्छा रखी रिटर्न ना मिला तो दुख, कोई एप्रिशिएट ना करे, अच्छा चलो एक बात है एप्रिशिएट ना करे, मगर एप्रिशिएट की जगह कोई उल्टा बोल दे फिर तो की कराया कपट, फिर पता क्या कि मैंने इसके लिए इतना कुछ किया, रो रहे हैं किस लिए रो रहे हैं कि जो कुछ किया था वो मैंने नोट करता गया था, किस लिए मैं कर रहा हूं, तो रिटर्न चाहिए ना। फिर कोई कुछ ना देवे आपको, आप अपना कर्म अच्छा करो, आप मुस्कुराते रहो, प्यार से सेवा करो, वो गाली देवे करे कोई करके दिखाए, आप प्यार से सेवा करो, खाना खिलाओ, ये करो, प्यार से कराओ, वो उल्टा ही बोले तुझे तो बनाने नहीं आता है, बेकार खाना बनाया, ये किया है, कुछ भी किया, आप फिर भी मुस्कुराते रहो, करके दिखाए कोई। कर्म के फल की इच्छा के बिना आप जी करके दिखाओ, एक दिन भी जी करके दिखाओ। राजा तो वो है ना, उसको राजा कहेंगे ना, मैं कर्म इसलिए कर रहा हूं कि मैंने कर्म करना, मेरी नेचर है, मेरे प्यार से खाना खिलाने की, मुस्कुराने की मेरी नेचर है, नेचुरल नेचर बन जाए, बाबा ने कहा हमारी नेचुरल नेचर बन जाए, वहां ये लाइफ है देवताओं की, सत्युग नेचुरल नेचर। मैं अपने इस संस्कार को किसी कारण से नहीं छोड़ता या नहीं अपनाता, मैं अपना रूप जो भी बनाता हूं किसी वजह से नहीं बनाता, किसी को देख के मुस्कुराया, किसी को देख के नहीं मुस्कुराया, किसी को देख के कहा ओम शांति, किसी को देख के आ रहा ये कौन सा संस्कार है। बाबा ने कहा ना करो ना, रोज करना पड़ेगा तभी तो, रोज चेकिंग करेंगे तभी तो अलबेलापन फिर आ जाता है ना। कम से कम अपना जो बाबा के सामने वादा किया उसको रिवाइज तो करें, अपने को याद तो दिलाएं, तो अटेंशन रहेगा ना, फिर थोड़ा बहुत तो अटेंशन रहेगा ना। इसके लिए अंदर ये जो परिवर्तन के लिए समझ तो बाबा दे देता है, समझ आना कोई बड़ी बात नहीं है, मगर समझ के अनुसार कर्म करना या सोचना, कर्म करना, बोलना, ये जो है इसमें ताकत है। हम अपने हथियार यूज करेंगे जो बाबा ने दिए हुए हैं, वो हम अपने हथियार क्यों नहीं यूज करते, क्योंकि ताकत नहीं, उस समय पर स्मृति में भी नहीं आते हैं, उसमें वो चीज आती है जो पुरानी चीज है, वो यूज करनी आती है, हमें सहज लगती है, फिर कभी कभी कहेंगे अच्छा कोई नहीं, अभी तो पुरुषार्थी है ना, कोई हो जाएगा, बाबा करेगा, मैं नीचे गिरूं बाबा चढ़ाएगा, बाबा चढ़ाएगा, बाबा करेगा, बाबा कहेगा मैं करूंगा या आप करोगे, यही समझ रही है कि जो करेगा वो पाएगा। मैं तो समझ देता हूं, बाकी मैं करूंगा, थोड़ा करना तो आपको पड़ेगा। बाबा तो समझ दे रहा है ना, कर रहा है ना, बाबा करेगा नहीं, बाबा कर रहा है, अब मेरे से नहीं होता तो उसकी विधि अपनानी पड़ेगी, अपने को शक्तिशाली बनाना पड़ेगा ना। बाबा ने विधि बताई है, भी है योग भी है, अब ज्ञान में तो इंटरेस्ट है, मुरली में इंटरेस्ट है, दौड़े दौड़े आते हैं, पर वो ज्ञान को तो योग के बिना तो ज्ञान हम स्वरूप नहीं बन सकते। परिवर्तन के लिए समझ है, शक्ति नहीं है। इसलिए दादियों को 14 साल तपस्या क्यों कराई बाबा ने, हम लोग जब आए पहले 10 साल बाबा के व्यक्त होने तक 10 साल हुए, 58 के एंड में मैं आया, बाबा व्यक्त हुए 18 जनवरी 1969 को, 10 साल कोई सेवा ही नहीं थी, कोई फंक्शन ही नहीं थे, प्रदर्शनी नहीं थी, जिनको सुनाते थे वो सुनते ही नहीं थे, इसलिए हम क्या करते थे, हम बैठे रहते थे हर रविवार को 3 घंटे हमें बुलाया जाता था, 9 बजे आ जाओ, 3-12 बजे तक बैठ जाओ, बहन जी सामने बैठ गए, हम नीचे बैठ के, कुर्सियां तो होती नहीं थी, चौकड़ी लगा के 3 घंटे भी पता ही नहीं लगता था, पता ही नहीं। जब वो स्टेज बन जाती है ना, जैसे लाइट की स्टेज बन जाए ना, शरीर लाइट हो गया ना, अब आपको वो अगर अनुभव हो जाए ना, आपको भी नहीं पता लगेगा, आपको थकावट भी नहीं और मन भी नहीं कर रहा, हमारी एक दादी थी, कहती थी अरे कभी तो गॉड कॉन्शियस हो जाओ, सारा समय टाइम कॉन्शियस, आधा घंटा हो गया, घंटा हो गया, घड़ी देखते रहते, कहती गॉड कॉन्शियस हो जाओ। मैं ना बैठे रहो ना, कहती योग लग गया तो फिर क्यों उठते हो, कभी तो बैठे रहो। ऐसे दादियां बिठाती थी, क्योंकि उनको पता है कि बिना बैठने को स्टेज में बैठना, पावरफुल स्टेज में लगातार बैठना, तब वो स्टेज बनती है। तो बाबा ने कहा डबल लाइट में कर्म करो, कल का वरदान था, स्लोगन था, तो मनोरंजन होगा। डबल लाइट में रह के जो कर्म करोगे ना, पर डबल लाइट में रहना मेन बात वो है ना, क्योंकि भारी क्या चीज है, हम आत्मा है ही लाइट, वैसे भारी भारी तो ये नेगेटिव है ना, भारी तो जो सबके प्रभाव में हम आ जाते हैं वो भारी है ना। जब हम लौकिक में जाएंगे, कारोबार में जाएंगे, वो प्रभाव जो पड़ता है वो भारी है। फिर योग में बैठेंगे तो वो स्टेज नहीं बनती है। फिर बाबा कहते हैं योग ने युद्ध करते रहते हैं, जब तक योग लगे तब तक लाल बत्ती से श्वेत बत्ती हो जाती, तो योग तो लगा ही नहीं, तो वो अंदर ताकत तो नहीं आई ना। ऐसे योग लग गया ना, आपको अनुभव कराएंगे, वहां माताओं का प्रोग्राम था, वहां तो आपको किस तशुरू हो गया है, सोनीपत में बनाया किस लिए, इतने कमरे हैं, सब कुछ है, लिफ्ट भी कल परसों चालू हो रही, बन गई है अब तो, सब का इतना बड़ा 100 कमरे तैयार हो रहे हैं, तो वहां पर तो लगातार प्रोग्राम रखने पड़ेंगे ना, एक के बाद एक के बाद एक। और दादी कहती तपस्या बठिया, बस पहले स्थान को शक्तिशाली भरो, नयों के बाद में शिविर रखेंगे 6 महीने के बाद, पहले उस स्थान में शक्ति भरनी है। जैसे कोई मधुबन जाता है, पांडव भवन जाता है, बाबा के कमरे में जाता है, तो शक्ति है ना वहां पर, शक्ति भरी है ना वहां पर, बाबा साकार में रहे हैं ना उस कमरे में, तो शक्ति है ना उस स्थान में। शक्ति तो वृत्ति से, तो वृत्ति से वातावरण बनता है ना, व्यक्ति से शक्ति आती है ना, फिर वो स्थान दूसरों को शक्ति देता है। पहले हम स्थान में शक्ति भरते हैं, अब मंदिर में क्या होता है, ईंटों पत्थरों का कमरा बना के मूर्ति लगा दी, कहीं से ला के मूर्ति, सब जा रहे हैं, देवी 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 भोग लग रहा है, घंटी बजे, वो सब ने देवी देवी कह के उस स्थान में शक्ति भर दी। चेतन ही जड़ में शक्ति भरता है और फिर जड़ चेतन को शक्ति देता है, इसलिए वहां पर ताकत भरने के लिए प्रोग्राम बना रहे हैं, शक्तिशाली स्टेज बनाने के लिए टाइम लगता है। अंदर एक नाम, और एक बार वो स्टेज का अनुभव हो गया ना, फिर अपने स्थान पर या परिवार में आकर के भी वो स्टेज काफी देर बनी रह सकती है। एक बार अच्छा अनुभव हो जाए, एक नाम ऐसे घंटा दो घंटे भी ऐसे बैठे जैसे लाइट से फ्रिश्ता की तरह, शरीर हल्का सा एकदम, कोई भारीपन नहीं, कोई थकावट नहीं, कुछ नहीं। एक बार जानकी दादी ने हमें अनुभव सुनाया, कहती मैं सवेरे से यहां बैठी हूं, 3 घंटा हो गया, 3 घंटा, कहती कुछ सोच भी नहीं रही, कोई ज्ञान का मनन भी नहीं कर रही, बाबा सामने है, मैं यहां बैठी हुई कुर्सी पर, मन नहीं कर रहा बात का, किसी से बात करने, साइलेंस इज पावर। स्टेबिलिटी अंदर कितनी देर है, मेरी शांत की कितनी देर तक स्टेज है, हलचल में जैसे योग किया ना, उठे ना, अंदर चेक करो मेरी अंदर वो स्टेज कितनी देर बाद में बनी रहती है, किसी से बात करने का मन नहीं ना, बाबा के प्रभाव में हम कितना रहते हैं, देहधारियों के प्रभाव में आ जाते हैं। लगातार वो स्टेज में बनी रहती है जिससे संस्कार खत्म हो जाए। योग अग्नि जिसे कहते हैं, संस्कार बदलेगा तो इससे बदलेगा ना। कभी योग किया थोड़ी देर, अभी उठे हलचल में आ गए, लौकिक बात वो बात वो बात कहां चले गए, किसके प्रभाव में आ गए। ये आप अभी भी कर सकते हो, कुछ नियम अपने बनाओ। सुबह 4 से 8 है, मधुबन से प्रोग्राम आया हुआ है, 4 से 8 अच्छा बातचीत करो, थोड़ी करो, घरों में रहते हो, परिवार में रहते हो, बच्चे हैं, अच्छे को गीत बजा के टेप बजा के किचन में खाना बनाते रहो, पर ऐसे अंदर शांत बातचीत में वो प्रभाव बच्चों में खाने में जाएगा ना। सुबह सुबह ज्यादा बात करनी नहीं, मोबाइल है और है कुछ है नहीं, क्या जरूरत। एक क्लास में भी मोबाइल ले आते हैं, अच्छा साइलेंट में रखो को बहुत जरूरी बात है तो, नहीं तो क्या जरूरत है। साइलेंस की शक्ति का अनुभव करो। कुछ नहीं मैं कहता ना, सोचो मैं आत्मा शांत स्वरूप तो हूं ना, मेरा स्वधर्म है ना, स्वधर्म सुख देता है, पर धर्म दुख देता है, स्वधर्म में रहो ना शांत। कारोबार में आओ, अच्छा किसी ने बात की, अच्छा ठीक, काम की बात करो, थोड़ी बात करो ऐसे बस, लाइट फरिश्ता। ये तो हमारे हाथ में ना, बाहर मुक्ता में क्यों आ जाते हैं। अंतर्मुखी का मायना क्या है, उसको उस स्टेज को एंजॉय करो। आपको ऐसे बातचीत में भी सुख मिलता है ना, क्यों बातचीत करते हैं, बातचीत क्यों करते हैं, प्राप्ति होती है ना। खाली बैठे को लोग कहते बोर हो गए, कुछ देखते रहे, बोलते रहे, खाते रहे, ये करते रहे, एंजॉयमेंट है, खुशी है। एनर्जी यूज करने में, पैसा खर्च करने में खुशी होती है ना, जमा करने में यूज कर रहे हैं हम अपनी एनर्जी को, यूज कर रहे हैं और खुश हो रहे हैं, कमजोर होते जा रहे हैं, चार्जिंग है नहीं। सेल का आप यूज करते रहोगे चार्ज किए बिना तो क्या होगा, आपका चार्जिंग बैटरी की आत्मा की होती है शांति से, कुछ नहीं। दादी कहते नो थिंक, सोचने की भी क्या जरूरत है ज्यादा। ड्रामा का पाठ पक्का करो, बाबा ने कहा तो बच्चे कहते मेरे जितना ड्रामा का पाठ बच्चों को नहीं आता है। 2 दिन पहले मुरली में कहा ड्रामा, कोई बात हो गई ना, हो गई फिर क्या, ऐसा करता तो ऐसा ना होता, अरे होना ही नहीं था, यही ये सोचना भी फालतू है ना, व्यर्थ है, ये वेस्टेज है टाइम की। करने के बाद कुछ उसके बारे में करेक्शन करना, सोचना अच्छा कहा है तो आगे के लिए ध्यान रख लेना, बस शॉर्ट। इस भूल ने भी सिखा दिया आगे के लिए, बस इतना, ज्यादा नहीं। इसमें भी फायदा है अगर मैं आगे ना करूं तो, अभी बोला गया कुछ हो गया, अच्छा हो गया ना, बाबा का बिंदी लगाओ आगे बढ़ो, आगे नहीं डरता नहीं। इसलिए योग का कोई सिस्टम बनाओ, अच्छा है भट्ठी करना भी, चलो एक दिन भी ठीक है आए, अच्छा है थोड़ी देर बैठे, कुछ तो फायदा है। पर जैसे कि सिस्टम होता है ना खाने पीने में भी, रोज नहीं कहते अच्छी चीज बनाई जाती, कभी कभी बनाई जाती है। ये दिवाली दशहरा बड़ा दिन होता तब मिठाई तो तब बनानी चाहिए ना, रोज थोड़ा मिठाई खानी चाहिए। तो ये जैसे कभी कभी खाने का संस्कार बन गया, नहीं सतयुग में देवताओं को तो रोज ही खाना फर्स्ट क्लास होगा ना, रोज सब प्रकार का होगा ना, वैरायटी होगा, जो भी खाओ यहां कहेंगे रोज बनाओ बैठ करके, तो बनाने में मेहनत लगती है। वहां कोई कारोबार और है नहीं है, करेंगे क्या? वहां एंजॉयमेंट है, हर चीज में एंजॉयमेंट है, भारीपन नहीं है। यहां हर चीजें बनाने में, खिलाने में, उसका सब एंजॉयमेंट है, वहां सतयुग में ना एंजॉयमेंट। यहां पर आप देखो नहीं, थोड़ा सा सोचना पड़ता है, कई चीजों को सोचना पड़ता है, इसलिए फिर असंस्कार बन गया। कभी कभी बाबा कहते नहीं, कभी कभी नहीं, रोज रोज का ऐसे संस्कार हो नहीं, ऐसी ऐसी भट्टी आज की फिर रोज ही भट्टी है हमारी। ऐसा सिस्टम सेट करो, बाबा ने तो 8 घंटे कहा है, अच्छा 4 घंटे नहीं तो 2 घंटे कम से कम सिटिंग होनी चाहिए, सिटिंग। आधा घंटा सवेरे, आधा घंटा रात को सोने से पहले, 1 घंटा बीच में, आधा घंटा क्लास के टाइम रख लो, आधा घंटा और रख लो शाम को, आधा चार 2 घंटा सिटिंग चाहिए, सिटिंग आकर के। और उसकी भी पहले तैयारी करके आके, दिन भर भी अटेंशन रखना पड़ता है, ज्यादा नहीं बोलना है। यहां आके पावरफुल स्टेज बनाने के लिए बैठना होता है और सारा दिन अटेंशन रखना होता है, नहीं ताकि मैं जब बैठूं तो कनेक्शन मिल जाए बाबा से, पावर मिल जाए। जितनी मेरी स्टेज होगी उतनी बाबा की पावर मिलेगी ना। अगर मैं आकर के अपने आप को बार बार फिर पाठ पक्का करूं, मैं आत्मा, मैं ज्योति बिंदु, परम धाम, आत्मा, ज्योति, अरे क्या हुआ, सारा दिन क्या किया आपने? यहां आके थोड़ा योग लगाना है, यहां शक्तिशाली बनना है। योग में तो हम है ही है ना, याद में तो हम कौन है, किसके हैं? दादी कहती 3 बातें हर वक्त याद रखो, मैं कौन, मैं किसका, क्या कर रहा हूं, ताकि अपना कर्म चेक करते रहो ना, ये बोल मेरा ठीक नहीं है, मैं किसका हूं, उस अनुसार ही तो कर्म करूं ना। फिर मैं आत्मा, बाबा का बच्चा, फिर मुझे क्या, संगम योगी ब्राह्मण, फिर मुझे करना क्या है, क्या क्या रहा हूं। तो अटेंशन रखने से, ध्यान देने से फिर अंदर याद आता है ना, नहीं फिर भूल भूल लगती है ना, नहीं तो अलबेलापन आ जाता है। इसलिए ध्यान सारा दिन अटेंशन, हम ब्राह्मण है ना, संगम योग चल रहा है, चाहे घर में है, चाहे परिवार में है, चाहे विवाह में है, तो बाबा के बच्चे ना हम। ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कोई सेंटर पर आके थोड़ा बनते हैं, हमारी तो लाइफ है ना, योगी जीवन तो हमारा जीवन है ना, योगी जीवन ना, हमारा तो योगी जीवन है। अब लौकिक में भी, कारोबार में भी, जितना कम से कम आवश्यक है, खास विकारी संबंधों में बहुत ध्यान देना पड़ता है। कल हमारी वहां अच्छी डिस्कशन हुई, हम रोज रात को आजकल बैठते हैं, जब सब चले जाते हैं, ग्रुप आते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर हम थोड़ा फ्री हो जाते हैं, फिर आपस में रात को बैठते हैं। सूक्ष्म कर्मों की गति के बारे में कल अच्छी रूहान हुई कि परिवार में रहते हो, कई कारोबार आपको करने पड़ते हैं, शादियों में जाना पड़ता है, कई कारोबार करने पड़ते हैं, पर अंदर ज्ञान भी तो बुद्धि में रखो ना, निपटाने के लिए ऐसे इंटरेस्ट नहीं, खुशी नहीं, रुचि नहीं तो हिसाब किताब बच जाएगा, दिखावा नहीं। कोई भी चीज ऐसी ना करो दिखावे के लिए करो, नहीं तो हिसाब किताब बन जाएगा। एक तरफ हम कहें कि ये काम विकार है, हम तो खुद ब्रह्मचर्य में रह रहे हैं, दूसरों की शादियों में नाच रहे हैं खड़े होकर के, मैं पवित्र, मेरी बहू बच्चा पैदा करे, वो करे बेशक करे, मैं नाचू तो ना कम से कम, अंदर सूक्ष्म समझो राज को। मेरे लिए भी सतयुग आ रहा है, मेरी बहू के लिए भी सतयुग आ रहा है, कबूतरों के लिए सतयुग है, उनके लिए जो अभी सतयुग है, मेरे लिए तो कलयुग है, मेरी बहू के लिए सतयुग है। बाबा क्या कहेगा? कहेगा ये विश्वास कैसे करेगा बाबा आप पर कि वाकई ये मेरा बच्चा है, काम करेगा आगे चल के। बाबा कैसे आपको जिम्मेवारी का ताज पहनाए, बाबा कैसे अपनी शक्तियां देवे, वरदान देवे। पात्र को तो देखना पड़ता है ना। बाबा कह गए मैंने इतनी समझ दी, सब कुछ दी, सफेद कपड़े पहनाए, फिर काले पहन लेता है, फिर रंग बिरंगे पहन लेता है, क्या हो जाता है इसको। कपड़े बेशक रंग बिरंगे पहनो, भाव है अंदर रंग बिरंगा नहीं होना चाहिए ना, उसके रंग में ना आ जाओ, वातावरण के रंग में ना आ जाओ। सेवा के लिए जाना पड़ता है, अच्छा सेवा के लिए, लोक लाज के लिए भी जाना कोई फायदा नहीं है, कुछ नहीं है, लोग कोई नहीं खुश होता। इतनी चीजें ले जाओगे कोई कहेगा क्या लाए, कुछ भी नहीं लाए, फिर शक्ल बदल जाएगी, किसी को खुश कौन कर सकता है, कोई नहीं खुश होता है। ना किसी को खुश करो, अपना पार्ट बजाओ, जितना बचा सके टाइम एनर्जी इन चीजों से बचाओ, नहीं तो इसका इफेक्ट होता है। फिर श्रीमत को सामने रखो, बाबा ने क्या कहता है, बाबा ने क्या किया और क्या कर्म करके दिखाया। अब 18 जनवरी आ रही है ना, तो बाबा ने क्या कर्म किया वो हम पढ़ रहे हैं, सुना रहे हैं, पर हमने करना है ना, इसलिए तो याद करते हैं। जो बाबा ने किया वही मैंने करना है ना। बाबा तो गृहस्थ में रहा ना, बच्चे थे ना, परिवार था ना, बाबा रोल मॉडल है ना हमारे सामने। बाबा ने कैसे अपना सेव किया, ट्रस्टी बन गया, सब कुछ समर्पित कर दिया, कहा नहीं अब मेरा नहीं है। बाबा ने करके दिखाया ना, प्रैक्टिकली समाज का सामना किया ना, तभी तो बाबा व्यक्त हुआ ना, फिर संपन्न हुआ। हम तो बाबा के हैं ना, बच्चे तो बच्चे बाप समान होते हैं ना, जैसे बाबा वैसे हम। बाबा तभी तो प्यार करेगा ना, बाबा का प्यार, बाबा सब पर प्यार करता है, प्यार का सागर है, पर किस किस आत्मा को पहुंचता है बाबा का प्यार। जो जितना समीप होगा उतना एक्स्ट्रा उसको महसूस होगा। बाबा तो दाता है, पर आत्मा में क्वालिटी होती है तो बाबा के प्यार को खींचती है आत्मा, और बाबा का प्यार ही तो संगम युग में है, और क्या है। केवल यही टाइम है जबकि ईश्वर आत्माओं को प्यार का महसूसता कराता है, केवल ये समय है जब हम ईश्वर के प्यार का अनुभव करती है आत्मा, ये यही टाइम है, और टाइम नहीं है, किसी युग में नहीं है। निराकार बाप का, देहधारियों का प्यार तो सब सारा कल्प चलता है, निराकार का प्यार जिसे अतीन्द्रिय सुख कहते हैं, भगवान प्यार करे मुझे और उसका प्यार का मुझे अनुभव हो, बाबा मुझे प्यार करता है, मुझे पहुंचता है बाबा का प्यार, ये केवल ये टाइम है। हाँ, इसके लिए तो बाबा कहता है दैहिक में रहो, मगर दैहिक के कोई इच्छा ना रखो। दैहिक प्राप्ति की इच्छा होगी तो मेरा अनुभव नहीं होगा, आपका आत्मा कर नहीं सकती है। आत्मा को उस स्टेज में अपने आप को लाना पड़ता है, निराकारी स्टेज में, अशरीरी स्टेज में, तब बाबा का अनुभव होने लग जाता है। जब हम ऐसे बैठ जाते हैं, लाइट होके बैठ जाते हैं, बैठे रहो कितनी देर बैठे रहो, ना नींद, ना थकावट, ना बीमारी, ना किसी चीज का कोई असर नहीं उस स्टेज में होता। मैं आपको बताऊं, कुछ नहीं होता। बीमार हो तो बीमारी भाग जाती है, थकावट और थकावट भाग जाती है, सिर दर्द हो रहा हो तो ठीक हो जाता है, क्योंकि वो लाइट में बैठ गया ना, जब लाइट में बैठ गए तो वो अनुभूतियां सारी होने शक्तियां आने लग जाती हैं। वही तो अनुभव है ना, वो सिर्फ संगम योग में होता है। इसलिए कुछ सिस्टम बनाओ, एक सिस्टम बनाओ, एक नियम मर्यादाओं पर पक्के रहो, नहीं तो एक तरफ हम जमा करते हैं, एक तरफ लीकेज हो जाता है, एक तरफ कमाई की, एक तरफ खर्चा कर दिया, फिर आत्मा की ताकत तो नहीं नजर आती है ना, लीकेज हो जाती है ना। अच्छा थोड़ी देर योग कर लिया, फिर क्रोध भी कर लिया, फिर क्या हुआ, किसी के प्रभाव में भी आ गए, फिर क्या हुआ, फिर योग किया हुआ कहाँ गया, वो तो कुछ भी नहीं है। अगली बार योग लगाने में फिर दिक्कत आएगी, बाबा कहेगा इसको कनेक्शन देते हैं, फिर ये क्या हो जाता है, फिर मदद की जरूरत रहेगी, फिर उसका सहयोग चाहिए, उसका सहयोग से बाबा से, बाबा डायरेक्ट देव दे रहा है ना, बाबा दे रहा है तो मैं बाबा से बैठूं तो बाबा से लूं ना, मैं मुझे को बाबा दिखाए तो मैं नहीं देख सकता क्या, मेरा कनेक्शन नहीं है बाबा के साथ, दूसरे की क्या मदद की जरूरत है इसमें मुझे।